الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد تو آج ہم لوگ یہاں سے انشاءاللہ وہ بس انشاءاللہ ہم نے شروع میں پڑھی ہے ایک دفعہ دوبارہ آپ آئے ہیں تو پڑھ لیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعین یا فتاح
یا
علیم ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں تک ہم نے چھوڑا ہے یہاں پہ اس میں کچھ پوائنٹس میں بریفلی دوبارہ کوشش کرتا ہوں بات کرنے کی ویسے تو خیر ان کے اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلس تفاصیر میں مل جائیں گی ایک ہم نے انہوں نے پوائنٹ ریز کیا یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز دس از دا بیسک کرکس دا جس کو کہتے ہیں نا سینٹر نیوکلیس ہے ہمارے پوری بلیف کا ہمارے ایمان سسٹم کا کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیں اب یہ صراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا اینڈ آئی تھنک میں دوبارہ آئی وڈ آسک یو کہ وٹ ڈو یو تھنک دس مینس کہ یہ دینا صراط المستقیم یہ صراط مستقیم کیا ہے
صراط المستقیم از دا وے ٹو سکسیس فار اینی تھنگ
یس
ان دا شارٹیسٹ ان دا موسٹ پراپر وے
ہاؤ ڈو یو نو وی اف وی آر آن صراط مستقیم اینڈ ہاؤ ڈو یو نو کہ دیٹ از دا صراط مستقیم
قرآن سے ملتا ہے
قرآن سے بھی ملتا ہے اس کا آنسر دیکھیں میں بریفلی جاتا ہوں ہاں نہیں نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی قرآن ہمارے لیے ہے
میرا تو بلیف سسٹم یہ کہ وین یو ڈو اینی کام آپ کا بزنس ہو کچھ بھی ہو تو آپ اس میں ایا کا نام ہو تو وہ ایا کا نستعین کرتے ہیں
صحیح
ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شارٹیسٹ سکسیسفل راؤنڈ دے دیتا ہے فار اینی جاب تو اسی طریقے سے ہر چیز پہ امپلائی
ہر چیز پہ امپلائی کرتا
ہے میری والدہ ان کو جنت نصیب کرے شی یوزڈ ٹو آلویز پریچ ٹو می کہ بیٹا جب بھی کہیں پھنس جاؤ یہ ڈیسیجن میکنگ اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ پڑھو بہت دفعہ یہ پڑھتے جاؤ
اگر آپ ٹوٹلی اپنے سسٹم کے اندر انبلڈ کر لیتے ہیں
بالکل
ایسے ہی ہاں وہ تو یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ اس میں ہم نے یہ ایک پوائنٹ اور یہاں پہ جو ایڈیشنل تھا اس کو میں ذرا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم پہلا پوائنٹ یہاں پہ یہ نوٹ کرنے کا بہت زیادہ ہے غور سے ہے کہ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا انک لتہدی علی صراط المستقیم کہ بے شک آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دکھانے والے ہیں اور یہاں پہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم وہاں پہ آیا تھا لتہدی لام کا ایک واسطہ اللہ نے دیا اور میں دوبارہ ریپیٹ ہی کر رہا ہوں ویسے یہاں پہ لیکن اس میں یہ تھا مثال کے طور پہ میں نے تم نے مجھ سے پوچھا بھائی کوئی فلاں جگہ مجھے جانا ہے ڈیفینس میں مجھے سی ویو جانا ہے میں نے تمہیں راستہ بتایا بھائی یہاں سے نکلو یہ ٹیپو سلطان سے یہ شاہی فلائی اوور لو ایکسپریس لو اتحاد سے یو گو اسٹریٹ ٹو سی میں نے راستہ بتا دیا یہ ہے لتہدی میں نے دیکھا بتا دیا یار یہ راستہ ہے اس پہ چلے جاؤ تو پہنچ جاؤ گے ایک ہے اہدنا کہ بھائی اب میں بیٹھا ہوں میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑا اور میں نے کہا چلو لیٹس گو میں خود لے کے چلا گیا تو یہاں پہ کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ٹھیک ہے پہلی چیز اچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور میں دوسری طرف بھی آتا ہوں بزنس اور اس کا کیونکہ یو مینشن صراط الذین انعمت علیہم کہ یہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا اللہ نے انعام کن پر کیا اولئک انعم اللہ من النبیین وصدیقین والشہداء والصالحین جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک انبیاء پر پھر صدیقین پر پھر شہداء پر اور پھر صالحین پر ان چار لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ان چار لوگوں میں ظاہر انبیاء تو اب ہیں نہیں اور صدیقین سے مراد تو ظاہر ہے ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی اب نہیں ہیں انہیں اور یہ ظاہر ہے وہ لوگ ہیں اور پھر تھرڈ نمبر پہ شہداء سے بھی مراد ظاہر ہے جو شہید ہے وہ اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے تو ہمیں ہم ان کے راستے پہ کیسے چلیں گے ہمیں ان کا ایکچوئل راستہ تو نہیں پتا ہوگا نا وہ تو شہید ہو گئے ہمارے لیے آج ایز جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو ہمارے لیے ایک راستہ اللہ نے چھوڑا صالحین و صالحین نمبر فورتھ صالحین سواد سے ہے ٹھیک ہے اب یہ صالحین کے راستہ جو ہے یہ صراط المستقیم ہے اب بعض لوگ یہ بھی کنفیوز ہو سکتے ہیں صالحین تو کوئی وہ ہوگا جو کسی جھگی میں کہیں کونے پہ پیر فقیر کوئی صوفی بیٹھا ہوگا اور وہ اللہ اللہ بس کر رہا ہوگا اور اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوگا تو دیٹ از ناٹ کریکٹ بیکاز صالحین کون لوگ ہیں اگر دوبارہ دین اگین ہمارے لیے جو ایک معیار ہے وہ کیا ہے صحابہ جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے تھے اینڈ ان کی جو لائف پیٹرن جو ان کا لائف اسٹائل تھا وہ ہمارے لیے معیار تھا तो उसमें हम एक तरफ देख रहे हैं कि अबू बकर या उमर रजी अल्लाह अन्हुम है जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है और वो भूखे और इस तरह से भी गुजारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उस्मान रजी अल्लाह अन्हु भी मिल रहे हैं जो कि मदीना के रिचेस्ट लोगों में से हैं, या अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे कि अशरा मुबशरा में जिसको हम फेमस 10 चोजन सहाबा कहते हैं, जो 10 को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना इला आखिरिल हदीस, के ये 10 लोगों की बशारत दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जन्नती हैं। इन 10 लोगों में उस्मान का भी ज़ाहिर नाम हमने देखा, बाकियों का भी देखा, और एक देखा नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। व्हेन ही माइग्रेटेड टू मदीना, इनके बारे में ख़ास तौर से क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बिज़नेस का क्योंकि यहाँ पे जिक्र आया तो मैं इसलिए ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना एंड ही वॉज़ ज़ीरो, ही हैड नथिंग। उस वक्त मदीना जो जिसको मदीना कॉन्स्टिट्यूशन या मदीना अग्रीमेंट कहते हैं उसके मुताबिक हर अनसार और महाजर जो सहाबी थे उन्होंने हर एक अनसार ने महाजर को होस्ट कर गया किया अपने घर में, इन्हें भी इसी तरह एक बंदे ने अपने घर ले गए एक सहाबी, और उन्होंने कहा आज से हर चीज़ तुम्हारी है, ये हाफ नीचे मैं रहता हूँ, ऊपर की फ्लोर तुम्हारी, जो मेरा है वॉट एवर आई ओन इस आधा तुम्हारा। इवन उसकी 2 बीवियाँ थी, उसने कहा कि एक को मैं अभी तलाक देता हूँ दूसरी तुम्हारी। उसने कहा नहीं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सेड कि नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, जस्ट शो मी द वे मदीना का बाजार कहाँ पे है, दैट्स इट, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। और ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, एंड व्हेन ही फाइनली पास्ड अवे तो इनके बारे में जो किताबों में लिखा हुआ है तो इनकी गालबन 4 बीवियाँ थी, और तुम्हें पता है कि विरासत में बीवी का 1/6 हिस्सा होता है, विरासत में 1/6, तो अगर 4 हैं तो वो चारों में 1/6 हिस्सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो रफली आता है कि ही हैड लाइक 80 kgs ऑफ गोल्ड पर वाइफ, दैट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच वन ऑफ हिज 4 वाइफ्स, और फिर बच्चों का अलग होगा, वो सब अलग होगा। और उनकी विरासत के बारे में आते हैं, उनकी बाकायदा सोने की ऐसे बड़ी बड़ी ब्रिक्स होते थे और वो कुल्हाड़ों से उसको तोड़ तोड़ के दे हैड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट बिकॉज विरासत है। तो सालहीन से वट जो पता चला उससे ये मुराद यकीनी ज़रूरी नहीं होगा कि कोई गरीब गुरबा कोई बैठा हुआ कोने पे, तो जिस लाइन में भी जिस फील्ड में भी हम होंगे उस लाइन में एक्सेल करेंगे, ऑनर करेंगे अपने एग्रीमेंट्स को, सच बोलना है। और इसके बारे में एक पॉइंट गुजरा था बट उसमें फिर आगे हम दोबारा इंशाल्लाह किसी टाइम चलेंगे। और फिर आगे लास्ट ज़ुआलीन मखज़ूबी अलैहिम वज़ुआलीन से 3 मायने हमने लिए थे। पहला ज़ाहिर है ये हो सकता है कि एक काफिर की रास्ते पर ना चला और मुसलमान बना, सिंपल। दूसरा ज़ाहिर है मखज़ूब से कुरान में क्योंकि लअनल्लाहु वग़ज़ब अलैहिम, ये कुरान में अल्लाह ने यहूद के लिए बोला कि ये मखज़ूबी अलैहिम, और नसारा के लिए कहा कि हुज़ालीन, ये नसारा के लिए इस्तेमाल किया, तो ये भी हो सकता है इससे यहूदियों और एक नसारा मुराद। लेकिन एक थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, इससे मुनाफ़िकीन में से ही वो लोग, एक वो लोग हैं जो दीन में एक साबित शुदा काम है उसके अंदर उसको बिला वजह अपनी न्यू रिसर्च के नाम पे या जिस नाम पे भी उसको काटना शुरू कर दें, ये भी साबित नहीं है, ये भी साबित नहीं है, ये भी साबित, एक जो 1400 ईयर से चल रहा है मसला उसको सिर्फ जस्ट टू दीन में कोई ना कोई पक निकालने के लिए, तो ये भी उससे मुराद हो सकते हैं और ज़ुआलीन से वो भी मुराद सकते हैं। अब एक चीज़ साबित नहीं है और उसको ज़बरदस्ती उसमें ऐड कर करके एडिशनल दीन में एग्जैजरेशन करें या एडिशंस करें, तो ये भी मुराद हो सकते हैं, वल्लाहु आलम। Anyways, ये तो खैर बेसिक वो हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट जंप इन द मिडल। अच्छा, अब हम लोग बेसिक थोड़ी सी तफसीर में जाते हैं ताकि इससे इंशाल्लाह आज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सूरह फातिहा के बारे में बहुत सारी अहादीस आई, एक ये मुझे मिल गई, मैं अभी जिसका जिक्र कर रहा था। पहली तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है जिसमें एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज जो है यानी सूरह फातिहा जो है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, निस्फ मेरे लिए और निस्फ मेरे बंदे के लिए है। तो एक इसकी फजीलत इस हमें हदीस से मिलती है। और दूसरी हदीस जो मैं ख़ास तौर से कर रहा था इसमें क्योंकि जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा वाली हदीस थी उसमें उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी तो उन्होंने बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया, इस वजह से इमाम मालिक ने लिया और उन्होंने कहा कि अब हम बिस्मिल्लाह को भी इसी सूरह फातिहा का हिस्सा मानेंगे और इसे तिलावत में शुमार किया जाएगा। लेकिन इस हदीस में जो यहाँ पे दूसरी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, इसमें बहुत डिटेल में आता है कि जब अल्लाह, ये भी हदीस कुदसी है, जब अल्लाह ने कहा, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, और फिर जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ और सना की, और इसी तरह मालिक यौमिद्दीन जब हम कहते हैं तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी यानी मेरी हाइनेस बयान की, और इस तरह जब हम एक एक आयत के ऊपर बाकायदा अल्लाह सुबहाना व ताला जवाब देता है, तो इस हदीस के अंदर लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का जिक्र नहीं आया इस हदीस में। इसमें डायरेक्ट जब स्टार्ट हुई बात सूरह फातिहा के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से स्टार्ट हुई। तो इस तरह में ज़ाहिर बहुत सारी हदीसें ऐसी मिलती हैं। खैर एनी हाउ देर इज़ नो राइट और रॉन्ग दिस। इसी तरह फिर आप आगे चलेंगे तो आमीन के ऊपर भी बाज़ फुकहा के नज़दीक वो बोलते हैं कि आमीन भी होनी चाहिए, और फिर बाज़ इसको इस
आमीन का वर्ड नहीं कुरान में है
कहीं पे कुरान में आमीन का वर्ड तो गुजर
रैंडम क्वेश्चन है
मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन आता है,
आता
है। कहीं ना कहीं आता है गालबन, लेकिन आमीन इटसेल्फ यार आमीन इन इटसेल्फ अमन से निकला ये लफ्ज़, अमन से आमीन मतलब कंप्लीशन कह लो, या इन अ वे ये आमीन इटसेल्फ एक दुआ ही है अगर आप गौर करो कि बस अमन के साथ, अब जो मैंने दुआ मांगी है इसको अमन के साथ कबूल कर ले इसको कि अमन आमीन इसको मैं यानी ऐसे ऐसे एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊँ। असल अरबी ज़बान में कभी भी देखना कोई लफ्ज़ को अगर समझना हो ना तो तीन अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको कहते हैं वाव अलिफ या, इनको हरूफ आतैन इल्लत कहते हैं, हरफ हरूफ इल्लत कहते हैं। ये तीन हरूफ आर एक्स्ट्रास जो नॉर्मली एक्स्ट्रास के तौर पे आते हैं। हर वर्ड कुरान में एक उसका रूट वर्ड होता है, बेस होता है, जिसे मजदर कहते हैं। उस वर्ड से फिर फाइनली दूसरे वर्ड्स निकलते हैं। कभी भी किसी वर्ड को देखना आप इसी सूरत में उठा लो कोई भी वर्ड, उसमें से वाव अलिफ और या इन तीन को साइड पे कर दो, ये 90% से भी ज़्यादा 99% चांस है दीज थ्री आर द एक्स्ट्रास, और जो दूसरा वर्ड होगा वो उसका फाइनली मीनिंग होगा। तो उसके अंदर अगर हमने देखा तो हमजा मीम और नून, या को हटा दिया हमने और पहले अलिफ को हटा दिया जब, तो अमा ना से लफ्ज़ निकला है। अब अमा ना से आमीन यानी अमन के साथ टेक्निकली इसका मीनिंग यही बनेगा, लेकिन ये इन इट सेल्फ एक दुआ होगी यानी जो अब हमने दुआ मांगी है इसे कबूल फरमा ले हमारे हक में बेहतरी के लिए, इस तरह से इसका
मतलब वही होता है अरबी में जो उर्दू में होता है
पीस।
यार लूजली तो इसको हम अमन को पीस ही बोलेंगे लूजली अगर ट्रांसलेट करोगे, लेकिन अमाना से ही फिर आगे ईमान भी निकला है, और फिर असल में एक वर्ड से ही डिफरेंट बाब्स होते हैं। ठीक है, अब ये 24 डिफरेंट बाब्स होते हैं। उसके अंदर जब हम हल्का सा अल्फ़ाबेट को एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो मीनिंग बदल जाता है, जैसे उस दिन भी बात हो रही थी इन्ना अनजलना हो या नज़ला हो। अब अनजलना और नज़ला में फ़र्क थोड़ा सा टेंसेस का आ जाएगा।
अमन जो कहते हैं
इन अ वे, हाँ ऐसे ही समझ लो। देखो पूरे कुरान में 80% वर्ड्स तकरीबन मेरा ख्याल है अगर ओवरऑल आप सारे रेपिटेशंस को और इनको हटा दो जो कुरान में बहुत सारे हैं, तो उनको सबको हटा दो और फिर वो वर्ड्स हटा दो जिनके सेम मीनिंग्स हैं उर्दू में भी और अरबी में भी, तो रफली देर आर नो मोर देन 1500 वर्ड्स जिन जो अरबी में ख़ास हैं और उर्दू में अलग हैं। तो उर्दू की लैंग्वेज बेसिकली मेजॉरिटी तो वही अरबी और फिर फारसी और उन्हीं से ही निकली हुई है, तो बहुत सारे वर्ड्स को वहाँ पे समझ सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह में बेसिकली तो ज़ाहिर है हम्द से मुराद यही है कि हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ही इन अ वे ये अलिफ लाम हमें यहाँ पर बताता है कि इससे अल्लाह ने तौहीद जो होती है ये कह सकते हैं जो एक दूसरे सारे माबूदों को रिजेक्ट करना, वो भी हमें इस एक अलिफ लाम से यहाँ पे पता चलता है। कैसे अलिफ लाम आता है प्रॉपर नाउन के लिए, किसी भी वर्ड पे एक होता है नाउन, फिर एक होता है प्रॉपर नाउन, इसी तरह एक वर्ब होगा, फिर दूसरे टेंसेज होंगे। मेरी ग्रामर वैसे इतनी स्ट्रॉन्ग द क्वीन, जैसे ये 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 एक कुकी है, ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ ए कुकी, ए कुकी के अंदर ये कोई भी बिस्किट हो सकता है, कोई भी बिस्किट मुराद हो सकता है, कोई भी एक, जब हम विदाउट अलिफ लाम किसी वर्ड का ट्रांसलेट करेंगे ना तो कोई एक, एक इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे अ कुकी इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन जब मैं बोलूँगा द कुकी तो फिर दी कुकी सिर्फ इसमें से एक होगा और वो द खास होगा, फिर वो द किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं होगा। ये कॉमन नाउन को अलिफ लाम प्रॉपर नाउन में लेके चलता है, इस अलिफ लाम का कमाल ये है। इसलिए जब यहाँ पे कहा अलहम्द, अब ये हम्द खास हो गई, द हम्द सिर्फ जो अल्टीमेट हम्द है वो किसकी होगी, लिल्ला, वो सिर्फ अल्लाह की होगी, वो किसी दूसरे पे फिर अप्लाई नहीं हो सकेगी। फिर नेक्स्ट रब्बिल आलमीन के अंदर हम देखते हैं कि रब जो लफ्ज़ है इसको ज़रा गौर से समझने की ज़रूरत है। रब वैसे बोला जाता है ग्रामेटिक जो वोकेबलरी के अंदर किसी यानी किसी की तरबियत या परवरिश करने को, इस काम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रब इस्तेमाल होता है, यानी किसी चीज़ को इसके तमाम चीज़ों की यानी रियायत करते हुए दर्जा ब दर्जे आगे बढ़ाना, यानी इसको हद कमाल पर पहुंचाना। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली कोई ग़ुलाम आका को क्यों रब कहता था, वो उसकी हर चीज़ का ओनर होता था, उसे दर्जा ब दर्जा वो शुरू से लेकर एंड तक उसके मरने तक उसका मालिक है, उसकी जो भी जिस फॉर्म में जिस लाइफस्टाइल में भी वो बंदा रह रहा है उसका रब, इसीलिए उसको रब ही कहा जाता था पुराने वक्तों में, मालिक को आका को रब ही कहा जाता था। फिर ज़ाहिर है हदीसों में आया कि अपने ग़ुलाम जो है वो आका को रब ना बोले, क्योंकि ये रब फिर अल्लाह के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान में आना शुरू हो गया। और आलमीन से मैंने ज़ाहिर है फिर आगे हमने जो डिटेल में पढ़ा ये जमा हो गया। इसमें एक तो पॉसिबिलिटी यही है कि दुनिया की हर चीज़ इस आलमीन में आ गई है, इंसान है, ये दुनिया है, ये आसमान है, चांद सितारे हैं और पूरा यूनिवर्स है, ये सब आलमीन है। एक आलम हम कंसिडर कर लें, ये गैलेक्सी है, ये मिल्की वे है, दूसरा हम कहेंगे ये फलाए प्लैनेट्स को लें, या फिर उसके और ब्रॉडर वे में जाएं तो फर्दर गैलेक्सीज़ को लें, ये भी आलम, डिफरेंट आलम हो सकते हैं। और दूसरा एक माना वो हो सकता है आलम, डिफरेंट आलम जिस कैपेसिटी में हम लोग रह रहे हैं वो आलम मुराद हों, तो ये आलमीन एक प्लूरल वर्ड है, इससे कुछ भी मुराद हो सकता है।
हम समझते हैं ना कि जैसे एक आपका आलम है पूरा, मेरा पूरा आलम है, जो भी मेरा परसेप्शन है ना वो मेरे लिए आलम है, माय फूड, माय बिजनेस, माय ये, दिस इज माय आलम। हाँ, अगर इसको माइक्रोस्कोप में अगर
माइक्रो, हाँ सही है,
मेरा भी एक डिफरेंट आलम है,
पॉसिबल
इसी तरीके से कॉस्मोस भी है, हर लेवल पे आलम,
हर लेवल पे है। हाँ ठीक है, उस तरह से भी आप कह सकते, बिल्कुल एब्सोल्युटली उस तरह भी कह सकते हो, यानी जाहिर है क्योंकि हम लोग ये कुरान की कमाल यही है, इसकी ब्रिलियंस यही है, इसको हम डिफरेंट एंगल्स से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और दैट इज़ वाई समटाइम्स वो काम पे डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है जो कन्वेंशनल हमें पता चलता है उसमें डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये भी मुराद हो सकता है, और भी कुछ पॉसिबली हमारे दिमाग में नहीं, देखो हमारी तो सोच छोटी है, हमारे दिमाग में भी वो चीज़ नहीं हो जो इससे एक्चुअल मुराद हो, तो ये भी पॉसिबल है। और फिर ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे हाईलाइट की थी, अच्छी मुझे समझ आई, इमाम राजी ने, क्योंकि इमाम राजी इज़ नोन फॉर इज लॉजिक और मंतिक और साइंस, और इसके ऊपर इमाम राजी वाज द नोन गाय जिसको कह सकते हैं अपने ज़माने का, तो इन्होंने अपनी तफसीर में कहा है कि इस आलम से, क्योंकि ख़ास तौर से इन्होंने बात का जिक्र किया है कि इस जिस आलम में हम रह रहे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं आज के ज़माने में, तो इसके बाहर इन्फिनिट डिफरेंट गैलेक्सीज मौजूद हैं और ये सब, क्योंकि चीज़ें, और आज की साइंस क्योंकि इस बात को प्रॉबरली ऑथेंटिकेट करती है, तो प्रॉबरली हम इस मीनिंग को लेना ही ज़्यादा शायद अकलमंदी के एतबार से होगा, लेकिन वो भी आलम पॉसिबल हो सकता है, इससे मुराद हो जो पहला आलम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, जैसे अल्लाह ने कहा ना जब आलम अरवा में रूहों को सबको जमा किया और कहा सब मैं तुम्हारा रब हूँ, सब ने कहा क़ालू बला, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, एक वो आलम था, फिर एक आलम दुनिया है, फिर एक हम मरेंगे जिसे आलम बरज़ख कहेंगे, और फिर उसके बाद आलम आखरत होगा, तो ये भी आलम कुछ भी मुराद हो सकते हैं। और इसमें एक अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि आलम 40,000 हैं, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अगर हम एक आलम करें तो उसके अलावा 40,000 दूसरे आलम हैं, ये एक रिवायत से बहरहाल पता चलता है, लेकिन ज़ाहिर है एक लूज़ रिवायत है, और खैर है नहीं, और इस तरह की बहुत सारी हमें दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। और आज अगर हम गौर करें तो ये बहुत पॉसिबल भी है, जैसे अब साइंस देखती है जो मार्स के ऊपर और यहाँ जाने की बातें चल रही होती हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जो मखलूक रहती हो वो कोई एक डिफरेंट, यानी वो इंसान ना हो, वो कोई एक डिफरेंट मखलूक हो, उसका अपना खाने पीने का कोई सिस्टम हो या अपना किसी एंगल से वो एग्जिस्ट करती हो, हमें नहीं पता, तो ये भी वेरी पॉसिबल है।
जिनों का भी एक आलम है ना,
जिनों का भी एक आलम ही है, जाहिर है वो डिफरेंट आलम है, क्योंकि वो आते हैं ना सूर्य रात में।
जिसमें
वो कौन सा एक एस्ट्रोनॉमर था जिसने फिर फाइनली लाइट ईयर्स इन्वेंट किए थे, कि अब हम इस कैपेसिटी, इस लेवल पे जा चुके हैं कि हम नॉर्मल अब माइल्स में या किलोमीटर्स में और उसमें तो कर भी नहीं सकते, अब ये लाइट ईयर्स में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आगे क्या है और क्या नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे सिर्फ ज़ाहिर है गौर करने की बात यही है कि अगर अल्लाह इतने आलमीन को चला रहा है तो एक हम जैसे आम बंदे के लिए उसको आगे पीछे करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल काम है। और एक बात और मैं मेरे जहन से ना निकले, आलमीन में एक बात और गौर करने की है कि क्या था, सॉरी मेरे आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। एनी हाउ, अगर इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो फिर हम आगे रहमान रहीम पे चलते हैं। खैर फिर आगे जाहिर है जो रहमान रहीम में रहमान सिफत है मुबालगा, इसको फिर अरबी ज़बान में कहते हैं मुबालगा। मुबालगा मीन्स हाउ डू यू ट्रांसलेट मुबालगा, एग्जैजरेशन कह लो, लेकिन एग्जैजरेशन इज़ प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड, एग्जॉल्टेड कह लो। हाँ एग्जॉल्टेड इज़ अ गुड वर्ड फॉर दैट। तो अर्रहमान ख़ास अल्लाह के लिए है और अर्रहीम ख़ास, जैसे फरीद साहब ने शुरू में बताया, वो ख़ास
दुनियावी
इंसान भी रहीम हो सकता है, कोई अपने नौकर पे रहम कर दे, उसको उसकी गलती माफ़ कर दे, कोई अपने बच्चे के साथ अच्छा काम कर दे, तो वो भी उसको, उसे भी हम रहीम कह सकते हैं, लेकिन रहमान नहीं कह सकते। रहमान वो होगा जो ख़ास अल्लाह के लिए होगा, एक चीज़। अच्छा दूसरा, फिर कुछ बाद मुफसरी ने भी लिखा है कि रहमान का जो लफ्ज़ है ये एप्लीकेबल होगा आखिरत में और रहीम का लफ्ज़ एप्लीकेबल होगा दुनिया में, कि दुनिया में अल्लाह रहीम है और आखिरत में अल्लाह रहमान होगा। फिर कुछ ने वाइस वर्सा भी कहा कि नहीं, दुनिया में रहमान है कि इतनी गलतियाँ इंसान करता है सब कुछ के बावजूद अल्लाह उसे माफ़ कर देता है, और आखिरत में अल्लाह रहीम होगा कि अच्छा अब ये सारा इसका आया अमाल नामा आया भी और पता आया, यानी कि एक चीज़ प्रूव हो गई कि ये इसके गुनाह और फिर भी उन पर दरगुजर करते हैं, उन्हें जन्नत में डाल दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर।
कुछ लोग जैसे कहते हैं कि रहमान जो है इस लाइक अल्लाह की रहमानियत तो इज़ फॉर एवरीवन, कि वो हर किसी को रिस्क देता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो ना, तो रहमानियत हो गई उसकी। तो रहीम जो होता है इट्स फॉर स्पेशली फॉर अल्लाह बंदा, वो जैसे वो उसको टीचिंग्स जो होती हैं, जो ईमान वाले जो होते हैं, जो अल्लाह की राह में होते हैं, उनके लिए जो रहीम की सिफत जो होती है उसकी वो अप्लाई होती है अल्लाह की फॉर मुस्लिम।
पॉसिबल देखें ये इसके अंदर हम ये इसके अंदर हाँ इसके अंदर हम वही आलम वाला मिसाल हो गई कि इसके अंदर हम ये तो कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट मैंने वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये किसी भी इसके अंदर या बैजावी में या कहीं पे ये वाला मीनिंग कभी गुजरा नहीं मेरी नज़र से। लेकिन अगर हम उसको सपोज करें हाइपोथेटिकली ले भी लेते हैं तो दैट डज नॉट मीन कि दैट इज़ द ओनली मीनिंग, हाँ वो भी एक हाँ पॉसिबल हो सकता है मेरी नज़र से नहीं देखे मेरे हो सकता है कहीं पे किसी तफासीर में वो भी मीनिंग लिखा हो। ये तो वो मीनिंग सारे हैं जो हम कहीं ना कहीं तफासीर में देख रहे हैं। एग्जैक्टली इससे क्या मुराद है, अब आलमीन से मुराद ली, अब देखो ना टेक्निकली स्पीकिंग दिस कुड बी करेक्ट, बिकॉज आलमीन जब अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं का, रब्बिल मोमिनीन नहीं का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का, सबके लिए अल्लाह सबका रब है, ठीक है। इसी तरह आगे हम सूरह बकरा में भी अभी देखेंगे या युअन नास और बुदू रब्बा को, ए लोगों अल्लाह की इबादत करो। अब लोगों से मुराद में आगे फिर डिटेल में अपने मकाम पे ये इंशाल्लाह आएगा, वहाँ पे भी या युअन नास आ रहा है, या युअल मुस्लिमून नहीं आ रहा, या युअल्लज़ीना आमनू नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है अल्लाह की रहमत और वो इन अ वे उन लोगों के लिए भी इस दुनिया में मौजूद है बिल्कुल, लेकिन जो अल्टीमेट कामयाबी का मयार होगा वो होगा तौहीद। उसमें हम गैर मुस्लिम को नहीं ले सकते, इसकी मिसाल समझने के लिए ऐसे देखो कि एक बंदा है, उस वो ईमान लाया, ठीक है, ईमान क्या है, वन, एक अल्लाह पर वो ईमान लाया, वन, ठीक है, दैट्स इट, उसके सामने ये वन ला इलाहा और कुछ नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है, ये इस पर ईमान लाया जब तो उसको ये वन पॉइंट मिल गया, जो ईमान नहीं लाया वो ज़ीरो पे है। अब इस, अब दोनों ने नेकी की, इसने भी ये जाके चैरिटी की 100 रुपये, उसने भी जाके चैरिटी की 100 रुपये, इसकी चैरिटी जब हमने 1 times 100 की, इसको 100 नहीं किया, इसके नामा अमाल में लिखी गई, लेकिन जो ईमान नहीं लाया था, जो ज़ीरो पे था, उसने 100 नेकियां की, लेकिन जब उस 100 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 100 times 0 इज़ 0, ठीक है। अब वो 1 crore और नेकियां करता रहेगा, मिलियंस और करता रहेगा, लेकिन जब वो मल्टीप्लाई बाय 0 करेगा तो वो अल्टीमेटली 0 पे रहेगा। लेकिन ये अब 100 पे था, फिर ये 10 और करेगा, ये 10 times 100 1000 पे पहुंच जाता है, एटसेट्रा, ये एटलीस्ट ये ग्रेजुअली आगे जा सकता है, लेकिन जो 1 पे ही नहीं आएगा वो आगे नहीं जा सकेगा, उसकी जितनी भी वो नामा अमाल होंगे वो अल्टीमेटली जाके मल्टीप्लाई 0 से हो रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम उसके साथ एड में रहेगा। तो ज़ाहिर है, खैर, एनीवेज कहने का मकसद ये कि तमाम जितने भी मामलात हैं सब सब के सब ये अल्लाह के लिए हैं, सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं, और इंसान ज़ाहिर है हमारे बस में तो कुछ नहीं है, हमारी तो सोच से भी वो वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा इतना आगे है कि हम उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकते। अच्छा, एनी हाउ, ये एक चीज़ और मैं बिफोर वी एंड, दूसरे ये कि अल्लाह की मिल्कियत तमाम कायनात पर जिस तरह आखिरत में होगी वैसे ही आज भी है। बाज लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, आज अब अल्लाह की क्योंकि एक रोज़े जज़ा है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आज इसकी हाकमियत नहीं है, ये कहीं बैक ऑफ द हेड लोगों के दिमाग में आ जाते हैं, और बाज लोग फिर इस पर इस तरह से भी इश्काल करते हैं, आगे सूरह बकरा में भी जाता है कि फिर तकदीर के ऊपर बहस आजकल बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार ये क्या है, और I don't want to go into that because it's a basic tafsir class. मगर इसको आसान समझने के लिए आजकल के ज़माने में तो बहुत ईजी है, अगर आप ये देखो कि अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, हम कहते हैं अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, अल्लाह जानता है कि इस बंदे का अमल क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो इस पर कोई बंदा आपको कहे कि भाई नहीं, ये अगर अल्लाह जानता है तो फिर ये इसकी गलती तो ना हुई, अल्लाह जानता है इसका क्या मतलब है।
उस पे एक वो उल्मा ने उसको पूछा था कि तकदीर आप समझाए ना, कि तो फिर अल्लाह की गलती, मतलब उसकी गलती तो है ही नहीं, किसी की गलती नहीं, अल्लाह ताला ही सब कराते हैं चीज़ें, तो बोला ठीक है, ठाड़ करके उसको चमार मार दिया, तो बोला ये तुमने क्या किया, बोला यार मेरी जिंदगी में हुआ तो अल्लाह ने कराया,
ऐसे ही है। लेकिन आप आजकल के ज़माने में देखें, आजकल मोबाइल पर आप गूगल मैप्स खोल लें, ऊपर एक सेटेलाइट है जो सेटेलाइट ऊपर से आपको दिखा रही है लाइव व्यू पूरे, आप उस दिन गया लंदन का पूरा वो एजवेयर रोड दिखा रही है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट दिखा रही है, एक एक रोड दिखा रही है, यहाँ कितना ट्रैफिक जा रहा है, अब इन रियल टाइम गूगल मैप्स ऊपर से देख रहा है, ठीक है, गूगल मैप देख रहा है, एक बंदा है वो एक आइसोलेटेड किसी रास्ते पे, किसी पहाड़ी रास्ते पे सपोज करें जा रहा है, टूटा फूटा कच्ची से रास्ता है, उस पे वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एंड में आगे एक खाई है, आगे जाके इसने गिरना है रास्ते में, अब रास्ते में साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि भाई आगे नहीं जाओ, डू स्टॉप का साइन लगा हुआ है, डू नॉट गो अहेड का साइन लगा हुआ है, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं इस कुरान की शक्ल में कि ये ना करो ये ना करो ये ना करो, अब वो आंखें बंद कर ले इन साइन से और वो जाता रहे और वो आगे गिर जाए, ऊपर से सेटेलाइट तो गूगल देख रही है ना कि ये बंदा आगे जा रहा है, और वो देख रही है इसने आगे गिरना है, सेटेलाइट देख रही है इसने आगे गिरना है, लेकिन उस बंदे को वो अपने अगर स्मार्टनेस में या साइंस को ना लेते हुए आगे जाता रहे तो इसमें हम ये तो नहीं कहेंगे कि सैटेलाइट की कोई गलती है, सैटेलाइट तो देख रही थी, सैटेलाइट के इल्म में था इसने गिरना है क्योंकि ये आगे जा रहा है, ये मेरे साइंस को हमने जो साइंस लगाए हुए हैं रोड के ऊपर इनको फॉलो नहीं कर रहा, ये आगे जाके गिरेगा, अब गूगल मैप्स को पता है और ये बंदा भी गिरने वाला है आगे जाके, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके इल्म में है, उसके नॉलेज में है, उसने फ्री विल दिया हुआ इंसान को, फ्री विल के साथ आप जाओ अपना काम करो जो करना है, अल्लाह ने साथ में ये साइन बोर्ड्स की शक्ल में हमें कुरान दे दिया, ये आपके सामने है, इन्हें फॉलो करो, इसमें डूज और डोंट सब मौजूद है।
उसमें ये बोलते हैं ना लोग कि वो जो लॉ कुरान है उसमें तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आदमी गिरेगा, तो सब अल्लाह ताला ने पहले से प्रीडेस्टिनेशन को बोलते हैं ना, प्रीडेस्टिनेशन वो आप पहले से किया हुआ है कि वो गिरेगा ही गिरेगा, हमारी क्या गलती है, तो उस पर लोग बोलते हैं नो दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि अल्लाह ताला को तो पता है, जैसे आपने बोला कि ये, लेकिन अल्लाह ताला को ये पता है कि मेरा बंदा जो है ना यहाँ पहुँच के ये इधर जाएगा,
ये इधर जाएगा,
पहले से पता है, हालांकि नॉलेज चीज़ है जो उसको खाई में ले जाएगी, तो अल्लाह ताला लिख दिया ठीक है ऐसे टंग करेगा और
खाई भी कर जाएगा। तो चॉइसेस उसकी फ्री विल असल देंगे ना जो फरिश्तों ने भी जब
अल्लाह ताला को चॉइस पता है उसकी कि वो क्या चॉइस करेगा,
ये चॉइस उसकी पता है एब्सोल्युटली, अल्लाह की नॉलेज में है कि इसकी ये चॉइस होगी, इससे मुराद ये है। अब आगे अमल करना ना करना, अल्लाह ने इसे साइन बोर्ड्स के शक्ल में ये कुरान दिया हुआ है, इस पर डूज और डोंट सब लिखे हुए हैं, ये इसे स्टडी करे, इसमें इसे इसके अंदर पॉन्डर करे और सीखे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर इससे बच सकता है बिल्कुल। और
थैंक यू।
जिसने इनको पैदा किया, बढ़ाया, तरबियत की और जिसकी मिल्कियत हर चीज़ पर मुकम्मल है, फिर कामिल है, यानी एब्सोल्यूट सुपीरियॉरिटी है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है। तो इस एब्सोल्यूट कंट्रोल से फिर ये भी मुराद होगा कि ज़ाहिर है एक हमारी फ़िज़िकल बीइंग है और एक हमारी स्पिरिचुअल बीइंग है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हमें डेडिकेट करना ज़रूरी है। इसके ऊपर भी पिछली क्लास में थोड़ी सी ब्रीफली बात चली थी, लेकिन यानी एक इंसान है जो जिस्मानी एतवार से तो बहुत बड़ा सी है, कह लें कि नमाजी है, रोज़ेदार है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका अगर अंदर से कैरेक्टर ही ख़राब है और उसके अंदर ये समझ लें कि अखलाकियात ही नहीं है, या माशरत बिज़नेस करने का उसके अंदर ढंग नहीं हो, या इस तरह के दूसरे मामलात उसके ख़राब हों, तो उसके अंदर भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। यानी फिर हम ब्रॉडर बड़े से बड़े लेवल पे जाते जाएंगे, एक जाहिर को एक अलग बीइंग तसव्वुर करेंगे और अंदर से जो बातें हैं, जो उसकी स्पिरिचुअल अंदर से कनेक्शन है, उसे हम एक अलग चीज़ कंसिडर करेंगे। तो जो इंसान की मालकियत है वो इब्तिदा और इंतहा के दायरे में, क्योंकि ज़ाहिर रिस्ट्रिक्टेड होगी, लेकिन अल्लाह की ये रिस्ट्रिक्टेड अल्लाह के लिए नहीं होगी, अल्लाह के लिए तो ये बियॉन्ड फिर बाउंड्रीज से भी आगे तक, क्योंकि हर चीज़ होगी। तो ज़ाहिर है फिर इंसान का एक फ़िज़िकल बीइंग क्या, उसके अंदर से जो उसका स्पिरिचुअल बीइंग होगा वो भी अल्लाह के कुदरत में या कब्ज़े में या अल्लाह की पावर में उसको कंट्रोल करना ज़ाहिर होगा। और किसी ना किसी फॉर्म में लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ने इंसान को इसे यहाँ इल्मी लैंग्वेज में कहते हैं नाकिस मिल्कियत दी हुई है, यानी कि वो दुनिया के जो कवानीन हैं माल दौलत का वो मालिक है, या ज़मीन जायदाद कोठी है, क्या लिखा हुआ था यहाँ, नाकिस, हाँ जैसे कंट्रोल है, जैसे ये मैंने उठाया, मेरे पास इसका कंट्रोल है, मैं इसको उठा के पानी डाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, या मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये सब मैं अपनी विल से ही कर रहा हूँ। अल्लाह की जो हाकमियत होगी वो इससे बियॉन्ड होगी, वो बिल्कुल कंप्लीट सुपीरियॉरिटी होगी, और इंसान की जो पावर होगी, जो उसकी कंट्रोल होगा, वो एक लिमिटेड फॉर्म में होगा कि सर्टन चीज़ें उसके बस में होंगी और सर्टन चीज़ें उसके बस में नहीं होंगी। और इसीलिए ख़ास तौर से एक चीज़ खाली मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि इस यहाँ ये मुझे इम्पॉर्टेंट क्योंकि लगा, इस मगरूर और गाफिल इंसान को अल्लाह ने ये आगाह फरमाया, ये मिल्कियतें और सब ताल्लुकात रवाबित सब, ये जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें दी हैं ये सिर्फ़ चंद दिन के लिए हैं, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है हर इंसान ने फिर मरना है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायकतुल मौत। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे, बाज़ औक़ात जब हम इस चीज़ के अंदर जाते हैं, एक जगह कुरान में आता है ना, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फसिहिम, बाज़ लोगों को अल्लाह ने क्या कहा, या इबादी, पहले तो लफ्ज़ वहाँ पे लाए इबाद, लोगों को अल्लाह ने ख़िताब किया, इबाद मेरे बंदे, बहुत ज़्यादा मेरे सालेहीन को ख़िताब नहीं हो रहा, मोमिनीन को ख़िताब नहीं हो रहा, नॉर्मल बंदे हैं। और कौन से बंदे, असरफ़ू अला अन्फसिहिम, के जो अपने नफ्स पर, अपने इनसाइड, अपने बातिन पर इसराफ कर रहे हैं, यानी कि गुनाहगार बंदों से अल्लाह ख़िताब कर रहा है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, के अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि हम लोग बाज़ टाइम इसमें एग्जैजरेशन के अंदर ये समझ लेते हैं, अच्छा अब बंदा डर के मारे कुछ ना करे, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़ज़ुनूबा जमीआ, के अल्लाह ताला सब के सब गुनाह लेगा, उसे एक जैसे कोई बहुत बड़ी गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स की फाइल, उस पर एक डिलीट दबाया और सब के सब डिलीट हो गया। और इसी तरह एक हदीस में आता है, लो बलग जुनूब होगा ऐनान समाई सुमस्तफ़र तनी गफ़र तो लगा लाओ बाली के, तुम अपने गुनाहों को करो भरो, करो गुनाह, करो गुनाह, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, ऐनान समा यानी कि आसमान की छत से लगा दो, सुमस्तफ़र तनी फिर एक दफ़ा मुझसे तुम तौबा करो, बोलो यार मेरी गलती हो गई, अल्लाह माफ़ कर दे, तो अल्लाह सब के सब माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह को लाओ बाली, अल्लाह को इसकी परवाह भी नहीं है। तो अल्लाह के लिए यानी हमें अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को तो टेक्निकली हमारी ज़रूरत नहीं है, तो अल्लाह की रहमत से मायूस हमने किसी फॉर्म में किसी सूरत में भी नहीं होना। और बाकी तो और आई थिंक हमने कवर कर लिया इस चीज़, आई थिंक हमने प्रीटी गुड सारा कवर तो कर लिया, कोई पॉइंट रह ना गया।
अभी हम लोग मलिकियों में तीन से तक तक कर रहे हैं
जी।
कुछ भी नहीं दिखा, मैंने पूरा ये देखी क्या कर दिया कर। अब मुझे बुरा लग रहा है, मैं कल अभी रात को बैठ के रिलीज करूँगा सब, और अच्छी नोट थोड़ी नहीं।
इसके लिए कहते हैं इस आयत को अगर हम समझ में नहीं तो लिखते
तो नहीं, लिखते तो नहीं, वो तो प्यार इतना बस जितना समझ सकते हैं समझेंगे, और के जहाँ अल्लाह तला समझाए थोड़ी सी नॉलेज हो जाए वो इसमें। ये भी बता रहे थे फराज भी बता रहे थे कि इट्स इम्पॉसिबल, कोई भी ये तो नहीं बोल सकता मास्टर हुजूर मास्टर या अल्लाह ताला ने जिनको कुरान सिखाया, वरना और कौन बोल सकता है वो मास्टर मास्टर कुरान है। सिर्फ उस जमाने में जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ
उन लोगों को इतना टाइम लग जाता
था। हम लोग थोड़ी ये सब हम लोग समझ सकते हैं जितना बस अल्लाह ताला हमें इल्म दे समझाए।
बाकी मेरा ख्याल है बस ये की पॉइंट्स कुछ हम जो हमने हमें इससे सूरह फातिहा से समझ आते हैं। पहला समझ आता है इसमें अल्लाह ने हमें दुआ करने का पहले तो तरीका बताया इस सूरह फातिहा के अंदर, ये कुछ जो की मसाइल हमें समझ आते हैं इससे, ये खुद एक दुआ है। लेकिन इसमें अल्लाह ने हमें पहली चीज़ क्या समझाई, दुआ करने का तरीका समझाया कि किसी की जब अल्लाह से दुआ करें तो सबसे पहले उसकी हम हमद सना करें यानी ये तारीफ़ करें। और ये रियलिस्टिकली स्पीकिंग भी अगर किसी कोई मुलाजिम है उसने अपने मालिक से कुछ मांगना है, पहले आके अगर मालिक की तारीफ़ कर दे थोड़ी सी तो वो खुश हो जाएगा, वो खुशी में आके वैसे ही उसकी मदद पूरी कर देगा। और ये एक तरीका हमें इस सूरह फातिहा से भी समझ आता है कि सबसे पहले जब अल्लाह से हम दुआ आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मांगेंगे तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये सब क्या है, ये सब अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही है।
इस चीज़ को बेसिकली हम एक्नॉलेज कर रहे हैं,
एक्नॉलेज कर रहे हैं हम अल्लाह की बड़ाई को एक्नॉलेज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसे ही है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे पता चलती है वो ये है कि ये जो अल्लाह की हम्द और सना है ये इंसान का एक फितरी तौर पर फ़र्ज़ है, इंसान के ऊपर एक फितरी एक तकाजा है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी इंसान के लिए यही कहती है। क्योंकि एक जगह कुरान में आता है ना ये वन तअद्दू नेमतुल्लाह ला तहसुआ, कि अल्लाह की अगर हम नॉर्मली नेमतों को गिनना शुरू कर देंगे तो गिन तो पाएगा ही नहीं इंसान, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ सम फॉर्म में जितनी नेमतें याद हैं अगर उतनी भी बयान कर दें जितनी इंसान की अपनी कैपेसिटी में अपनी इस्तेतात में है वो भी बयान कर दें तो अल्लाह की किसी ना किसी फॉर्म में तारीफ़ करते हुए फिर नेक्स्ट स्टेप इस दुआ वो ज़ाहिर करना कुछ ना कुछ शायद फ़ायदा भी देगा। और ये दूसरी जगह पे कर फरमाया नहनु खलकना खलकना हूँ व शददना असरा हूँ, यानी अगर हमने ही इंसान को पैदा किया है और हम ही इसको यानी स्ट्रॉन्ग व शददना असरा हूँ, इसे हम स्ट्रॉन्ग तरीके से आपस में जोड़ते हैं यानी इस कदर मजबूती के साथ के जो यानी एक एक अगर इंसान के हम आज़ा में से एक एक पार्ट को देखते हैं तो वो इस कदर परफेक्शन के ऊपर जुड़ा हुआ है कि ज़रा सा किसी का हाथ पाँव कहीं आगे पीछे हो जाता है, कुछ टूटा हुआ हो जाता है या कहीं एक्सीडेंट में ख़राब हो जाता है तो वो बंदा उसको हम बोलते हैं मफलूज हो गया इस या इसे हम लंगड़ा लूला या पता नहीं किस किस तरह के हैंडीकैप और कौन कौन से हम डिफरेंट उसके लिए वो यूज़ करते हैं। लेकिन अल्लाह का कमाल यह शदद नासरम का मतलब क्या हुआ कि उसने ऐसी परफेक्शन के ऊपर जोड़ा है एक एक पार्ट को कि वो बियॉन्ड किसी के समझे एक्सप्लेनेशन से बाहर है। आज की साइंस को कहीं मैं पढ़ा था एक खाली उसमें ये हमारा जो गुर्दा होता है लंग, इसके बारे में आ रहा था, ये प्योरीफाई करता है आपके फूड के सारे चीज़ों को। तो इसके इसके ऊपर एक थिन सी शीट लगी हुई है। अब इस थिन सी जो शीट है, ये आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो साइंटिफिक मेडिकल, आप बल्कि मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं इसमें। वो बहरहाल मुझे एक आगा खान में हमारे जानने वाले हैं, वो डॉक्टर ये बता रहे थे कि आज की अगर लेटेस्ट जो मेडिकल साइंस ने तरक्की भी की है और वो उस पतली उस इतनी थिन एक शीट अगर बना भी लेती है और उसके अंदर ये बिल्ट इन सेंसर भी लगा देती है कि इसने इसमें से खाने पीने का या जिस चीज़ को समझेंगे फिल्टर करना है, लेकिन उस सेंसर को ये कब बताएगा, कौन बताएगा कि अब इस चीज़ को मैंने समझेंगे फ़िल्टर करना है और इस चीज़ को फ़िल्टर नहीं करना। तो वो वहाँ तक अभी भी मेडिकल साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी। तो बहरहाल ये अल्लाह की परफेक्शन का ही एक एग्जांपल खैर हो गया। और इसी तरह एक एक बॉडी पार्ट को हम लेते हैं तो
पूरी बॉडी इज जस्ट
वो तो
पढ़ेंगे तो
बिल्कुल हाँ नहीं, आप तो खैर हमें इसके बारे में और आप कोई हमें एग्जांपल।
नर्व सिस्टम्स हैं हम लोगों के, जो नर्व जिस तरह से कनेक्ट होती हैं और कमांड सिस्टम है जो हाइपोथैलेमस जो कमांड करता है और ये सर्विकल पूरा हमारा जो नेटवर्क है पूरा इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, वो कोई कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं जो उधर समझाते थे अमेरिका में लॉस एंजलिस से लास वेगास तक बिछा दो उसको, बल्कि शिकागो तक, लॉस एंजलिस शिकागो तक वो वायर्स बिछा दो तो भी तो उसके मुकाबले में वो वायर्स हैं सिर्फ ब्रेन में जो कि बंद पड़े हुए छोटे छोटे और सबका काम है, सबके कमांड्स हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ सिर्फ कमांड के तौर पर यूज़ होते हैं, कुछ नेट वो सेंसरी हो का उस पर यूज़ होते हैं, कुछ मोटर उस पर यूज़ होते हैं। इट्स अनबिलीवेबल,
बहरहाल फाइनली यही है कि एक हदीस में ये मैं यहाँ पढ़ा अच्छा लगा, इसमें आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से मिज़ान अमल का जो मिज़ान अमल यानी कि जो हमारा जो वेइंग बैलेंस होता है हमारे अमाल का वो आधा भर जाता है सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने से। और इसके बारे में शकीक बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह ने एक बात फरमाई है कि जब अल्लाह ताला तुम्हें कोई चीज़ अता फरमाए तो सबसे पहले उसके देने वाले को पहचानो और फिर कुछ जो कुछ उसने दिया है इस पर राज़ी हो जाओ। अल्लाह पर उसके दिए हुए पर राज़ी होना हमारे ईमान का ही एक कोया के समझे के हिस्सा है। और अगर हम इस तौहीद को और इससे निकाल दें, ये एक ऐसा ज़बरदस्त एक फ़िलासफ़ी हमें इस्लाम ने दी है कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को निकाल दें तो फिर दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा। आप लेटेस्ट सबसे आगे की कैपिटल वर्ल्ड में देख लें या डेमोक्रेसी को भी देख लें, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ को फिर बदलना चाहते हैं, आज ये लॉ है कल वही लॉ उनको खिलाफ पड़ जाता है, फिर आप कोई आज गन कंट्रोल के लॉ को हम प्रमोट करेंगे, आधे लोग रिपब्लिकन शोर कर रहे होंगे कि नहीं भाई इसको खुला रहने दो, तो डेमोक्रेट्स लगे होंगे नहीं भाई गन कंट्रोल लगाओ। या कहने का मकसद खाली ये है कि उसमें इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि किसी एक सर्टन रूल के ऊपर हर कोई हर बंदे के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन ये हमें जो लॉ एक तौहीद की शक्ल में मिलता है, ये सुपीरियर लॉ, ये खुद ब खुद इंसान को नेचुरली अच्छे अमल करने के लिए या बुराई से रुकने के लिए काफ़ी है। अगर ये आइडियोलॉजी खाली पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर ले और ये समझ लें कि इसके ऊपर खाली इतना अमल हो जाए कि पूरी दुनिया में एक सुपीरियर सारे ह्यूमन बीइंग इस चीज़ को, एक चीज़ को मान लें कि हाँ एक अल्लाह सुपीरियर है जिसके सामने हम जवाब दें, तो ख़ुद ब खुद ये जो छोटे मोटे मसले हैं ये इंशाल्लाह इससे भी इरेडिकेट हो सकते हैं। लेकिन वो आजकल क्योंकि एक मेरा अपना ख्याल ये है ख़ास तौर से इट्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट इस्लाम, मैंने जो स्टडी किया है बेसिक जो फटा चल रहा है वो एक गॉडलेस सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जिसमें आपने देखा है अभी दो दिन पहले कहीं टेक्सास में भी किसी चर्च पे अटैक हुआ। तो अब मसला, अब हम जिस दुनिया में आ गए हैं इसमें मसला सिर्फ इस्लाम का नहीं है, मसला रिलीजन का खाली प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। एक तरफ जितने भी रिलीजन हैं वो हैं और एक तरफ एक गॉडलेस सोसाइटी क्रिएट करने की पावर हो रही है कि नहीं कुछ भी नहीं है, सब हर चीज़ जो आइडेंटिफाई होगी वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आइडेंटिफाई होगी। तो खैर एनी हाउ ये असल फड्डा और ये मसला जो है यही वो जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको डीस्टेबलाइज भी कर रहा है और दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये आगे जा रहा है उतने ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, उतने ज़्यादा दुनिया में वॉर शुरू हो रही हैं, उतने ज़्यादा मसाइल शुरू हो रहे हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अल्लाह में महफूज रखे। बहरहाल खैर एनी हाउ और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें सूरत से समझ आती है वो यही है कि खुद किसी भी इंसान को अपनी हमद और सना बयान करना जायज़ नहीं है किसी इंसान के लिए कि वो अपनी खुद तारीफ़ करे। जिसे कह सकते हैं यानी कोई बंदा है वो उसको अपने मुंह मियां मिट्टू वो खुद ही शुरू हो जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे इससे समझ आता है जायज़ नहीं है। और इसी के बारे में फलात वज़क्कू अनफसाहुम व आलमु बिमन इत्तका, ये आयत ख़ास तौर से दूसरी जगह पे कि अपनी बड़ाइयाँ बयान नहीं करो, अल्लाह बेहतर जानता है कि किस में कितना तकवा है। खुद अपनी सेल्फ प्रोपगेशन अपनी नफ्स की या अपनी ज़ात की ये इंसान के लिए जायज़ नहीं है। और बहरहाल खैर किसी गैरुल्लाह को फिर एक बात और पता चलती है कि रब कहना जायज़ नहीं है। जैसे कि शुरू में बात गुजर चुकी थी, रब का लफ्ज़ अब हमें ख़ास सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इवन दो अरबी ग्रामर वोकेबलरी के अंदर रब का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन अब हमें रब का लफ्ज़ सिर्फ ख़ास अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरी चीज़ों में इसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और इया का नाबुद व इया का नस्तईन भी ज़ाहिर है, इससे हमें यह पता चलता है कि मदद और इस्तेआनत ये सिर्फ अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। एक बात और जो हमें यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट समझ आती है, ये ख़ास तौर से एक जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, इत्तखज़ु अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, जब यह आयत नाज़िल हुई तो अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु आए और उन्होंने कहा कि ये कुरान की आयत नाज़िल हुई है, इसमें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने ये बात हो रही है उनके ज्यूज़ के जो रहबाइस थे और जो उनके बारे में कि ये इन लोगों ने उन्हें अपना खुदा तो नहीं बना लिया था। इत्तखज़ु अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इससे मुराद कुरान क्या कह रहा है कि इन लोगों ने अपने, ये कह लें आज की आसान लैंग्वेज में कि इन्होंने अपने उलमा को अपना खुदा बना लिया। तो अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इन लोगों ने अपने उलमा को अपना खुदा तो नहीं बनाया, ये यानी ये टेक्निकली उनकी तो पूजा नहीं करते, उन ये पूजा तो चलें ठीक है ये शिर्क ज़रूर कर रहे हैं, नासारा हों चाहे यहूद हों या जो भी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने उलमा को तो अपना खुदा नहीं बनाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों ने उन चीज़ों को जो इनके उलमा ने हलाल चीज़ों को हराम करना शुरू कर दिया या जो हराम चीज़ों को हलाल करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने उन चीज़ों को खामोशी से एक्सेप्ट नहीं कर लिया क्या? तो उन्होंने कहा हाँ कर लिया। उन्होंने कहा ये इनका शिर्क है। तो शिर्क, क्योंकि हम बार बार तौहीद की बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि तौहीद खालिस अल्लाह के लिए होगी, इस खालिस अल्लाह के लिए होने का मतलब ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें फिर डिटेल में एक शिर्क तो होता है ना बिल्कुल क्लियर वाज़े शिर्क, एक शिर्क होता है जो हिडन शिर्क जिसको आप लैंग्वेज में कह लें। एक सूरह काहफ से भी इसका पता चलता है, जहाँ पे थर्ड फोर्थ रुकू में जहाँ पे आता है वज़रब अल्लाह मसल रजुलैनी जालना अली खदिमा इलाखिर लाया, इस रुकू के अंदर दो आदमियों का तस्करा चल रहा है, ये आदमी गए जा रहे हैं और एक के पास अल्लाह ने इसे बहुत नेमतें दी थी, बड़े बड़े बागात दिए थे, ट्रीज थे खजूरों के और ये सब कुछ, और दूसरा आदमी था वो आम कोई अल्लाह वाला था, वो जाता था उसे कहता था कि भाई तुम ऐसा करो, तुम कुछ भी नहीं करो, सिर्फ माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इतना कह दिया करो जब अपने बाग में आओ। उसने कहा नहीं, उस बंदे के अल्फाज क्या थे, वला इरदितु इला रब्बी लाजिदन खैरम मिनहा मुनक़लबा, कि नहीं मुझे अल्लाह ने इस दुनिया में इतना दिया है, इसका मतलब ही उसने ये लिया कि नहीं मुझे आखिरत में भी, मैं आई एम द चोजन वन, मैं आखिरत में भी कामयाब होगा। तो अल्लाह ने उसका सब का सब बागात, उसके सब जो उसके ट्रीज थे, उसके फार्म से सब कुछ जल के राख हो गया और यहाँ तक कि कफ़ई वो अपने हाथ की हथेलियाँ मसलता रह गया। और उसने फिर क्या कहा, कालू या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश मैंने अपने रब के साथ शिर्क ना किया होता। तो इस शिर्क से मुराद, क्योंकि ये इन आयात में तौहीद की बात चल रही है, तो शिर्क से मुराद का मतलब असल में ये होगा कि सिर्फ एक तो ज़ाहिरी शिर्क है, ज़ाहिर है किसी दूसरे नौ खुदाओं, एक आइडियोलॉजिकल शिर्क है कि वो पूजा अपने बागात की, अपनी आज के ज़माने में फैक्ट्रीज़ की, अपने कारोबारों की, अपने बिजनेसेस की, उसमें इतना इन्वॉल्व है और वो ये समझ रहा है कि मेरे पास इतना कुछ है, इतनी नेमतें हैं, इसका मतलब ये है कि आई एम प्रॉब्ली द चूजन वन, मैं मुझे अल्लाह ने खुद पसंद किया है जो मुझे दिया है और मेरा आखिरत में भी, वाला रुदित जब मैं आखिरत में लौटूंगा तो वहाँ पे भी मेरा अंजाम अच्छा ही होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है। शिर्क करने से बचने का मतलब क्या होगा कि फिर हर फॉर्म में असल जो हाकमियत जब हम अल्लाह की तस्लीम करेंगे, फिर हमारे पास जो भी नेमतें हैं वो अल्लाह की दी हुई हैं, जो नहीं है वो अल्लाह की कुदरत में है और अल्लाह की वजह से नहीं है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करने का ही हमें इससे बहरहाल इन कंक्लूजन सबक मिलता है। मेरा ख्याल है बहरहाल ये हम सूरह फातिहा को कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट, ये कल से कल हम इंशाल्लाह सूरह बकरा को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे हम शुरू कर सकते हैं, बाकी आगे चलने में फिर कल देखते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।